विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशुता। हरे कृष्ण, आज सेमिनार का अंतिम दिवस है। आज ये विशद रूप से अंतिम भाग को विचार करने का कोशिश करेंगे। कल तक हम कहां तक किया था? कल वैसे पूरा बृहद भागवतमृतम का पूरा विभाग का पूरा विचार हम संक्षिप्त रूप में चर्चा किया। आज क्या हो रहा है? दिवाली है क्या? हाँ, छोटी दीपावली मतलब yeah, Lord Vishnu is getting up. He'll naturally wake up. हमारे वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृति में ये पटाखा का कोई स्थान नहीं था। हमारा वैदिक संस्कृति बहुत स्निग्ध संस्कृति है। मन को उलझन में डालना ये संस्कृति का उद्देश्य नहीं है, परंतु ये जो इंट्रोडक्शन हुआ है ये इससे वैदिक संस्कृति का सत्यानाश हो रहा है। ये आवाज से क्या होता है? मन का शांति नष्ट होता है। परंतु उन लोगों का दिमाग में ये नहीं है कि इससे कैसा नुकसान हो रहा है। और उनका भी कोई गलत फहमी नहीं है, क्योंकि उनको सिखाने वाला कोई नहीं है। आज का वैदिक संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति का अंध अनुकरण हो रहा है। पश्चिम से हमको लेना क्या है? पश्चिम रजोगुण का द्वारा प्रभावित है, और भारत सत्वगुण में है। तो आप ही विचार कीजिए, ये क्या सत्वगुण का प्रभाव है? ये रजोगुण का भी प्रभाव नहीं है, ये तमोगुण का प्रभाव है। रजोगुण का प्रभाव अगर होता तो रण क्षेत्र में जाके लड़ाई करता था, ऐसे पटाखा नहीं। वैसे अस्त्र शस्त्र लेकर रण क्षेत्र में जाके लड़ाई करता था, लड़ाई करके धर्म का स्थापना करते थे। परंतु ये लोग सोच रहे हैं कि पटाखा फटाके धर्म का संस्थापन होगा। धर्म का संस्थापन होगा या धर्म? देखिए, धर्म भाग रहा है। तो क्या करेंगे इस पटाखा के बीच? हम क्या यह चर्चा कर सकेंगे? मेरा ख्याल नहीं, मेरा तो संभव नहीं होगा। तो चलिए, हम केवल कीर्तन ही करते हैं आज। ये जो आवाज है ये केवल कीर्तन से ही इसको हम अवरोध कर सकते हैं। बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार कम से कम एक भला काम किया है, ये पटाखाबाजी बंद कर दिया है। काली पूजा में, वहां तो दिवाली नहीं होता है, वहां काली पूजा होता है, और काली पूजा में वो लोग फटाका फटाते हैं, तो ये बंद कर दिया है। तो अगर छोटा दिवाली में ऐसा हो रहा है तो बड़ा दिवाली में हरे कृष्णा। बृहद भागवतामृतम जिसके ऊपर ये सेमिनार हो रहा है, ये असल में श्रीमद भागवतम का ही सिद्धांत का प्रतिष्ठा कर रहा है। भागवतम में श्रीमद भागवतम के 12 स्कंद में जिसका वर्णन हुआ है, बृहद भागवतामृतम में उसका पूर्ण विचार हुआ है। इस प्रबंध में हम ये कह सकते हैं कि बृहद भागवतामृतम श्रीमद् भागवत का ही विस्तृत रूप है। पहले हम ये विचार किया था कि यद्यपि आध्यात्मिक मार्ग का 3 पंथा है, जैसे कर्मकांड, ज्ञानकांड और भक्ति, कर्मकांड, ज्ञानकांड और भक्ति। कर्मकांड का उद्देश्य है कैसे सही ढंग से हमारा कार्य करना, जिसके प्रभाव से हमें सुख मिल सकता है, इस भौतिक जगत में भोग प्राप्ति हो सकता है। और ज्ञान कांड में विचार हुआ है कि ये भौतिक जगत एक बहुत खतरनाक जगह है, इस भौतिक जगत दुख प्राप्ति के स्थान है, और जहां हमें दुख मिल रहा है वहां क्या हम रहना चाहते हैं? जहां आपको कष्ट मिलता है, जिस परिस्थिति में आपका केवल कष्ट ही मिलता है, आप क्या वहां रहना चाहते हैं? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, वहां से कैसे कितना जल्दी निकल जा सकते हैं? तो ज्ञान कांड में इसका ही विचार हुआ है कि ज्ञान कांड का पहले स्तर में विचार हुआ है इस भौतिक जगत का स्थिति कैसी है, ये कैसी जगह है, ये क्या सुख प्राप्ति के स्थान है या दुख प्राप्ति के स्थान है। तो इससे विचार करके उन्होंने सिद्धांत किया है कि ये भौतिक जगत दुखालयम अश्वाशतम, इस भौतिक जगत एक दुख के आलय है, मतलब जिस जगह में केवल हमें दुख ही मिलता है, और हम दुख नहीं चाहते हैं, तो स्वतः ही हमें यहां से निकल जाना चाहिए। तो कैसे हम निकल सकते हैं यहां से, उसका ही विचार हुआ है इस ज्ञान कांड में। और ज्ञान कांड की चरम सीमा में है योग, योग सिद्धि, समाधि, और समाधि के पश्चात क्या है इसका विचार ऐसे हुआ है, जब योग साधन के द्वारा हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान का दर्शन होता है, योग साधन के द्वारा जब हृदय में भगवान के दर्शन होता है तो हमारा स्वाभाविक मनोभाव कैसा होता है। देखिए, हम हैं जीवात्मा, या बहुत छोटा आत्मा, आत्मा के कण जिसका आयतन कितना है, केशाग्र शतभागश शतधा, केश के अग्रभाग, बाल के जो अग्रभाग को लेकर उसको 100 भाग में विभाजन करने के पश्चात उसको भी और 100 भाग में विभाजन कर किया जाए तो क्या होता है, 100 × 100 10,000। हमारा जो केश है, बाल है, बाल का जो अग्रभाग, उसको अगर 10,000 भाग में विभाजन किया गया तो उसका जो आयतन है वो है आत्मा का आयतन। इतना छोटा हम हैं, और भगवान विभू हैं, परम आत्मा। तो बहुत छोटा व्यक्ति जब कोई बहुत बड़े व्यक्ति के सामने आते हैं तो उनका मनोभाव कैसा होता है, श्रद्धा से सिर नीचा हो जाता है, झुक जाता है। तो योग में, योग समाधि में जब परमात्मा के रूप में हृदय में भगवान का दर्शन होता है तब ऐसे ही श्रद्धा से भगवान को, भगवान के सामने हमारा सर झुक जाता है। और सर झुकने का मतलब क्या होता है, सर झुकने का मतलब है आत्मा समर्पण, अपने आप को समर्पण। तो ये जो समर्पण या प्रपत्ति या शरणागति, भगवान को शरण लेना, माम एकम शरणं ब्रज, भगवान जो कह रहे हैं, तो ये जो शरणागति या भगवान का, भगवान के सामने अपने आप को जो समर्पण, इस समर्पण से भक्ति का शुरू होता है। भगवान के पास सामने सिर झुकाने के बाद हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कैसे मेरे प्रभु को मैं सेवा करूं। अगर मैं उनके दास हैं, अगर मैं उनके दास हूं तो दास का कर्तव्य क्या है, प्रभु को सेवा करना। तो ये जो सेवा है, ये सेवा की सेवा ही भक्ति। भजन, भज धातु से ये भक्ति शब्द का उत्पत्ति हुआ है। भज का मतलब है सेवा। तो वैसे हम देखते हैं कर्मकांड और ज्ञानकांड, कर्मकांड के पश्चात ज्ञानकांड, और ज्ञानकांड के पश्चात भक्ति। तो ये भक्ति का ही विचार श्रीमद् भागवत में हुआ है, और इस भक्ति का ही विस्तार, भक्ति का पूर्ण रूप से, भक्ति मार्ग और भक्ति का सिद्धांत क्या है, भक्ति क्या है, भक्ति का स्तर कैसे है, इसका विचार श्रीमद् भागवतम, बृहद् भागवतम ऋतम में हुआ है। जो श्रीमद् भागवतम में सिद्धांत के रूप में हुआ, यहां व्यावहारिक रूप में उसका स्थापना हुआ है बृहद् भागवतम। बृहद भागवत अमृतम में जैसे हम देखें पहले भिन्न कोटि के भक्त का वर्णन हो रहा है, एक से बढ़कर और एक का करते हुए एकदम भक्ति का चरम सीमा। और भक्ति का चरम सीमा का सीमा क्या है? भक्ति का चरम सीमा है श्रीमती राधा रानी। भक्ति के चरम प्रकाश हुआ है वृंदावन में। और ब्रजवासियों में तीन रूप से भक्ति का अनुशीलन हो रहा है या भक्ति का विनिमय हो रहा है। वो तीन संपर्क कैसी है? वो तीन संपर्क है सख्य, मतलब सखा के रूप में भगवान के साथ संपर्क, वात्सल्य या पिता माता के रूप में भगवान के साथ संपर्क, और मधुर प्रेमिका के रूप में भगवान के साथ संपर्क। तो ये तीन में से फिर मधुर रस जो है वो सर्वोत्तम है। प्रेमिक प्रेमिका के रूप में भगवान के साथ जो संपर्क, ब्रज गोपियां ने जिस ढंग से, जिस रूप से, जिस प्रकार से भगवान के साथ संपर्क जोड़े थे, वही है भक्ति के चरम सीमा। और ब्रज गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। तो सबसे सर्वोत्तम भक्तों को भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। महाभाव स्वरूपिनी राधा ठाकुरानी। मैं तो आपको एक अनुरोध करूंगा, अगर जब आप भी घर जाते हैं, आप भी शायद ये पटाखा फटाते होंगे दिवाली के वक्त, है ना? तो आज से थोड़ा विचार कीजिएगा, ये काम क्या सही हो रहा है? ये थोड़ा विचार करके उसके अनुसार आप आचरण करना। क्योंकि देखिए, मेरा कर्तव्य है, हम यहां आए हैं आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए, कैसे आचरण करना चाहिए वो सिखाने के लिए। नहीं तो देखिए, मेरा भी यहां आने का कोई जरूरत नहीं था और आपको भी यहां आने का कोई जरूरत नहीं था। हम जो उज्जैन में आए हैं केवल एक उद्देश्य लेकर ही आए हैं कि सही मार्ग जो है वो मनुष्य को दिखाना। और आप भी जो आए हैं, जरूर आप भी आए हैं केवल उस कारण से, कुछ सुनने के लिए, ताकि कुछ सीखने के लिए। तो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं? मैं सिखाना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सिखाना चाहता हूं कि क्या करने से आपका कल्याण होगा और क्या करने से आपका अमंगल होगा। तो किसी किसी स्थिति ऐसा हो जाता है, हम बिना सोच कर ये जो 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 वातावरण पारिपार्श्विक अवस्था जो है, उस अवस्था के प्रभाव से हम कर लेते हैं। सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। ये जो है ये है ये जो है इसको विचार करना चाहिए। जैसे देखिए आजकल क्या हो रहा है, सब ड्यू टू पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब और संघ की प्रभाव से लड़के लोग संघ लड़के लड़की संघ की प्रभाव से कोई काम कर लेते हैं। जैसे आजकल का जो लड़के लोग हैं वो जाके शराब पीते हैं। शराब क्यों पी रहे हैं? क्योंकि बाकी सब शराब पी रहे हैं। दोस्त जो है उनका दोस्त पी रहे हैं तो वो बोलते हैं चलो यार चलते हैं थोड़ा पी लेते हैं, तो वो भी वैसे पी लेते हैं। परंतु हम यहाँ क्यों आए हैं? हम आकर बोल रहे हैं कि पीना ठीक नहीं है। शराब पीने से हम समझा रहे हैं शराब पीने से हर्जा क्या होता है, मांस पीने मांस खाने से हर्जा क्या होता है, मछली खाने से प्याज लहसुन खाने से हर्जा क्या होता है। हम केवल ये नहीं कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, हम विचार के द्वारा हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो काम करने से खराब होता है नुकसान होता है वो काम नहीं करना चाहिए। जैसे आज भारत में मुझे पता नहीं है परंतु अमेरिका यूरोप में वो सरकार ने निर्देश दिया है कि जो सिगरेट पैकेट में उसको छपाना होगा कि सिगरेट स्मोकिंग सिगरेट पीना बहुत खतरनाक है शरीर के लिए। ये भी करते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होने का संभावना रहता है, पर फिर वो लोग पीते हैं सिगरेट, बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं। वो सोचते हैं होगा शायद दूसरे को हुआ है मेरा नहीं होगा। परंतु जो सही विचार जो है उसको विचार करना चाहिए कि अगर बोल रहे हैं कोई आलतू फालतू ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं, ये मेडिकली ट्रीटमेंट मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जब एकदम स्थिर सिद्धांत हो गया है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है तभी वैसे एक ये लिया है, ऐसे कानून निकला गया है कि हर सिगरेट पैकेट में सिगरेट प्रोडक्शन तो बंद कर नहीं सकेंगे क्योंकि वो लोग का इतना प्रभाव है, जो सिगरेट कंपनीज जो है उसका प्रभाव इतना है कि सरकार भी उसको बंद नहीं कर सकता है। अगर सरकार ये होता सख्त होता तो सरकार बोल देते बंद कर दो सारे ये, परंतु वो कर नहीं पा रहा है तो बताया कि कम से कम तो सिगरेट पैकेट में लिख दो कि सिगरेट पीना खतरनाक है। तो वैसे जो काम नहीं करना चाहिए उसको हम क्यों करेंगे? क्योंकि जो काम करने से हमारा नुकसान होता है तो हम वो काम क्यों करेंगे? तो वैसे हम जो कुछ कह रहे हैं इसका उद्देश्य है कि आप खुद विचार करके आप स्थिर कीजिए, क्योंकि आपको स्वतंत्र है, आपको स्वतंत्र है, यू हैव योर इंडिपेंडेंस। आपको विचार करना क्या करना है चाहिए क्या नहीं करना। अच्छा आप थोड़ा अब विचार कीजिए, ये जो पटाखा हो रहा है इसका दाम कितना है, एक एक पटाखा का कितना दाम होगा? तो देखिए सिर्फ कुछ आवाज तैयार करके पैसा खर्चा करने से क्या फायदा है? कुछ फायदा है क्या? अगर ये पैसा दूसरे को खिलाने के लिए या कोई महोत्सव होने के करने के लिए अगर होता तो मन में आनंद होता, पर ये इसमें तो आनंद नहीं हो रहा है। जो शायद जो ये पटाखा फटा रहा है उसका थोड़ा बहुत आनंद हो रहा है और बाकी लोगों का एकदम झंझट हो रहा है। और एक विचार ये भी करना चाहिए, पृथ्वी का स्थिति अब ऐसा हुआ है जब शीघ्र ही युद्ध होना शुरू हो सकता है, लड़ाई युद्ध हो रहा है, काफी जगह में हो रहा है, जैसे भारत में भी देखिए हो रहा है, पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर में, कश्मीर में, ये जगह जगह में लड़ाई हो रहा है। तो वहां जो जो ये शब्द हो, वहां ऐसा शब्द हो रहा है, परंतु ये हाँ ये खाली आवाज नहीं हो रहा है। तो लड़ाई, आप सोचिए अगर ऐसा लड़ाई शुरू हुआ तो ये शब्द का उद्देश्य क्या होगा? हमारा जान खतरे में है, हमारा जान खतरे में है ना? तब ये जो आवाज होगा ये सिर्फ पटाखा नहीं होगा, ये गोला, बंदूक का गोला, कमान का गोला, या तो आणविक अस्त्र भी प्रयोग हो सकता है। वो शब्द जो होगा वो सुनने का भी अवकाश नहीं मिलेगा, शब्द सुनने का पहले ही हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो आप सोचिए ये जो चल रहा है ये क्या कोई चिंताशील व्यक्ति का कार्य होना हो रहा है? नहीं, आजकल के जमाने में मुश्किल यही हो गए हैं, कोई सोच नहीं रहे, गंभीर रूप से कोई सोच नहीं रहे, सब ऐसे कर बैठते हैं, परंतु उसका परिणाम क्या है उसके बारे में नहीं सोच रहे। मेरा कहने का ये था, मेरा अनुरोध था आज से ये थोड़ा विचार करना कि आपका घर में कि क्या आप ये होने देंगे, थोड़ा विचार करना। शब्द जो है ये शब्द का प्रभाव बहुत बहुत तेज है, तो आप सोचिए कितना रुपया जल गया मोर देन 500। मैं जो कह रहा था, शब्द का प्रभाव बहुत तेज हो सकता है, ये शब्द जब मधुर रूप में, संगीत के रूप में जब शब्द का प्रकाश होता है तो क्या होता है, मन शांत हो जाता है ना, संगीत से मन शांत होता है। और जो क्रूर भाषण जब होता है, कोई अगर हमें तिरस्कार किया, कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, तो क्या है होता है, मन में कष्ट होता है ना। कोई आदमी अगर कुछ बोल दिया हमको, ये भी शब्द का ही प्रकाश है। जैसे देखिए द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था कि ये अंधा का लड़का है, उसका पिता अंधा है। तो ये जो शब्द, असल में धृतराष्ट्र अंधा था, तो चूंकि वो बताया कि धृतराष्ट्र का पिता अंधा है, उनका मन में इतना क्रोध हुआ कि उसका परिणाम में देखिए कुरुक्षेत्र का लड़ाई हुआ था और कितने सारे हो चुका, और पांडव से राज्य छीन लिया, द्रौपदी को इज्जत लूटने का कोशिश किया, ये सारे सब कुछ हुआ केवल एक शब्द के लिए। इसके बाप अंधा है, तो शब्द का ऐसा ये होता है, प्रभाव होता है। और एक प्रकार के शब्द है जो है मंत्र, ये मंत्र से मंत्र का प्रभाव इतना तेज है, मंत्र में इतना शक्ति है कि ये मंत्र हमको इस भौतिक जगत से निकाल दे सकता है। या तो और भी मंत्र हैं जो मंत्र के प्रभाव से सब कुछ ध्वंस भी हो सकता है, जैसे एक बेन नाम का एक राजा था, वो बहुत अत्याचारी था, वो इतना नृशंस था और प्राणियों को और प्रजा को ऊपर अत्याचार करके उसको सुख होता था, वो मजा मिलता था उसको। तो एक दिन सारे ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का मतलब मुनि ऋषियों ने, जो ब्रह्मज्ञ हैं, उन्होंने आकर बेन को समझाया, देखो ये नहीं करना चाहिए, तुम राजा हो, तुम्हारा काम है प्रजा को पालन करना, प्रजा को ऊपर अत्याचार करना ठीक नहीं है। तो बेन उनके बात नहीं सुना और उनको अपमान किया। तब ऋषियों ने जब देखा कि ब्राह्मण ने जब देखा कि ये सुधारने वाला नहीं है, सद उपदेश से इसको कोई मनोभाव का परिवर्तन नहीं होगा, तब उन्होंने एक आवाज किया, हुंकार किया, और उस आवाज से ही बेन का मृत्यु हो गया था। बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, बहुत बड़े राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे, इतना शक्तिशाली थे कि ब्राह्मणों को भी वो नहीं माना। वैसे भारत के राजाओं ने ब्राह्मणों को सम्मान देते थे, क्योंकि उन्होंने उनको पता था कि ब्राह्मण का शक्ति दिव्य है, ब्राह्मण में जैसा शक्ति है उसकी बराबर शक्ति इस भौतिक जगत में किसी को नहीं हो सकता है। जैसे आप जानते हैं दुर्वासा मुनि, वो जो कुछ बोल देते हैं वो हो जाता है, अब या साप देते या बर देते। दुर्वासा बहुत सारे आदमी को साप दिए थे, दुर्वासा मुनि इंद्र को भी साप दिया था, लक्ष्मी तुमको छोड़ के चले जाएगी, और उसके कारण इंद्र राज्य भ्रष्ट हो गया था, लक्ष्मी इंद्र को छोड़कर चले गई, इंद्र का सारे वैभव खत्म हो गया था। और वही दुर्वासा फिर शकुंतला को भी साप दिए थे, शकुंतला को साप दिए थे कि जिसके बारे में तुम सोच रही हो वो तुमको भूल जाएगा, उसको नहीं रहेगा, भूल जाएगा। ऐसे ब्राह्मण का इतना क्षमता है कि जो बोलते हैं वही। आध्यात्मिक आचरण का ऐसा फल है, जो बोलता है वही होता है। वैसे ही दुर्वासा ने कुंती देवी को बर दिए थे, क्या बर दिए थे, तुम जिस देवता को तुम बुलाओगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो वैसे ये है ब्रह्म तेज, आध्यात्मिक स्थिति में स्थित होने से यह शक्ति मिलता है। तो और और उनका शक्ति ऐसे आता है, मंत्र से आता है, शब्द से आता है। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, इसका प्रभाव क्या है, कैसा है, तो हमको पता नहीं है, परंतु ये मंत्र का जो शक्ति है उसका फल जरूर होगा। इस मंत्र जपने से, इसका प्रभाव से हम आध्यात्मिक उन्नति साधन कर सकेंगे और हम भगवान को कृपा प्राप्त हो सकेंगे। ये विश्वास लेकर जो जब हम भगवान के नाम लेते हैं, महामंत्र जप या कीर्तन करते हैं, तो उसका फल हमको पता लग जाता है कैसे होता है। तो आज तो क्या करेंगे, ये जो सेमिनार को तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हो रहा है, मन आपका भी मन स्थिर नहीं होगा, मेरा तो स्थिर बिल्कुल नहीं है। तो अगर कल संडे फीस्ट कितना बजे से कितना बजे तक है गंगा नारायण? हाँ, सेम टाइम। कल के संडे फीस्ट की जगह ये करेंगे सेमिनार, कल आप सब आ सकेंगे? हाँ, तो कल ही हम फाइनल सेमिनार ये करेंगे। आज आज तो लंका कांड हो रहा है, इस स्थिति में बृहद भागवतामृतम का चर्चा या विचार हम नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। तो कल मिलेंगे, कल कौन नहीं आ सकेंगे आप में से, हाथ उठाइए। अच्छा, बाकी सब आ सकेंगे। हाँ, अच्छा, इस समय 7 बजे से, सात जो समय में हम ये यहाँ हो रहा था उसी समय में हम कर लेंगे कल। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।